ಜ್ಞಾನಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರುಃ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾಂ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೇ, ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ ಹೇ. ಆಜಕಲ್ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಯೇ ಹೋ ಗಯಿ ಹೇ ಕಿ ದುನಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಕಿ ಕಮಿ ಹೇ. ಐಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಕೆ ಉದಾಹರಣ ಕಾ ಅಭಾವ ಹೇ ದುನಿಯಾ ಮೇ, ಜೋ ಹಮ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಅನುಸರಣೀಯ ಹೋ, ಜಿನ್ಕಾ ವ್ಯವಹಾರ, ಜಿನ್ಕೆ ಸೋಚ ವಿಚಾರ, ಜಿನ್ಕಾ ರಹನ್ ಸಹನ್, ಜಿನ್ಕಿ ವೇಷಭೂಷಾ ಆದಿ ಹಮ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ರೋತ ಹೋ. ಐಸೆ ಉದಾಹರಣ ಜೀವನ ಮೇ ಹರೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಚಾಹಿಯೇ. ದುರ್ಭಾಗ್ಯವಶ ಆಜಕಲ್ ಕೆ ಆದರ್ಶ ಉದಾಹರಣ ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ನಹೀ ರಹೆ, ಪರಂತು ಸಿನಿಮಾ ಕೆ ಅಭಿನೇತಾ ಔರ್ ಅಭಿನೇತ್ರಿ, ಬಹುತ್ ಬಡೆ ಬಡೆ ಖಿಲಾಡಿ ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಪತಿ ಯಾ ಐಸೆ ಲೋಕ ಯಾ ರಾಜನೇತಾ ಆಜಕಲ್ ಕೆ ಯೇ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬನ್ ಗಯೆ ಹೇ. ತೋ ಐಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಕೆ ಪದ ಚಿಹ್ನೋ ಮೇ ಹಮ ಚಲನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ಸಾರೆ ಸಮಾಜ ಕಿ ಗತಿ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಿ, ವೋ ತೋ ಹಮಾರೆ ಸಾಮನೆ ಹಮ ದೇಖ್ ಹೀ ರಹೆ ಹೇ. ಯದಿ ಹಮ ಸಬ್ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕೆ ಗುಣೋ ಕೋ ಪಢೇ, ಇನ್ಕೋ ಸುನೆ, ಇನ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಚಿಂತನ್ ಮನನ್ ಕರೆಂ, ತೋ ಹಮೇ ಪತಾ ಚಲೇಗಾ ಕಿ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಕ್ಯಾಸೆ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಕ್ಯಾಸೆ ಉಸ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಹೋನೆ ಚಾಹಿಯೆ, ಕೌನ್ ಸೆ ಉಸ್ಕೆ ಉಸೂಲ್ ಹೋನೆ ಚಾಹಿಯೆ, ಉನ್ಕಿ ಭಾವನಾಯೆ ಕ್ಯಾಸೆ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೆ, ಮನೋವೃತ್ತಿಯಾಂ ಕ್ಯಾಸೆ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೆ, ಬೋಲ್ ಚಾಲ್ ಕ್ಯಾಸಿ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೆ, ಸುಖ ದುಃಖ ಮೇ ಕ್ಯಾಸೆ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಯೇ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಉದಾಹರಣ ಸೆ ಹಮ ಅಚ್ಛಿ ತರಹ ಸೆ ಸೀಖ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ಕಲ್ ಚರ್ಚಾ ಯೇ ಚಲ್ ರಹಿ ಥಿ ಕಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿ ನಾರದ್ ಜಿ ಸೆ ಸುನೆ ಹೈ. ಮುನಿ ಪುಂಗವಂ, ನಾರದ್ ಜಿ ಮುನಿಯೋ ಮೇ ಸೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಮುನಿ ನಹೀ ಹೈ ಯೇ. ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಸದೈವ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಲಗೆ ರಹತೆ ಹೈ, ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ರಹತೆ ಹೈ, और यहाँ बताया जाता है कि तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में सदह रत रहते हैं नारद जी। वाक विराम वरम, जो वाक्पटु व्यक्ति हैं, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे बात करनी चाहिए, हमारी बोली कैसे होनी चाहिए, ऐसे लोगों में से जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि जब प्रसन्न हुए वाल्मीकि मुनि के प्रश्नों से, जब वाल्मीकि मुनि जानना चाहते थे कि ऐसे कोई आदर्श व्यक्ति दुनिया में है भी या नहीं, और फिर नारद जी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं कि हाँ, ऐसे व्यक्ति अवश्य है। इक्ष्वाकु वंश में आने वाले एक बहुत गुणवान व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम। श्री राम ऐसे ही एक आदर्श व्यक्ति हैं सारे दुनिया के लिए, और उनके गुणों का वर्णन मैं कहता हूं, अभी करता हूं, क्योंकि हे मुनिवर, आप चाहते हो ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने के लिए जो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे ही व्यक्ति श्री राम हैं, वो गुणवान हैं। और नारद जी ऐसे लगभग 70 गुणों का उल्लेख करते हैं। इनमें से प्रत्येक गुण का वर्णन तो हम नहीं करेंगे, बीच में थोड़े थोड़े जो गुण हैं बस उन्हीं का उल्लेख करके उनकी व्याख्या थोड़ा बहुत करने का प्रयास करेंगे। परंतु इसके पूर्व हम ये बताना चाहेंगे कि जिन व्यक्ति की चर्चा नारद मुनि करने जा रहे हैं, और जो व्यक्ति इस ग्रंथ के विषय हैं श्री राम, वो केवल मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति नहीं है, पुरुषोत्तम शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम शब्द का तात्पर्य है कि ये स्वयं भगवान हैं। आजकल कलयुग में विडंबना ये है कि लोग साधारण आदमी को भगवान बना देते हैं। ऐसे कई मायावादी लोग होते हैं जो हम सब कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, या तो फिर कोई व्यक्ति जब कोई चमत्कार दिखाता है, कोई विभूति कहीं से निकालता है, तो उसे लोग भगवान बना डालते हैं, और वो व्यक्ति इनकार भी नहीं करता कि मैं भगवान नहीं हूं, भाई ऐसे मुझे भगवान कह के संबोधित नहीं करो। तो साधारण आदमियों को भगवान बना दिया जाता है आजकल, ये एक विडंबना है। और दूसरी समस्या ये है कि जो वास्तव में भगवान हैं उनको साधारण मनुष्य समझते हैं लोग, जैसे श्री कृष्ण हैं, श्री रामचंद्र हैं तो ये भगवान, फिर भी अज्ञानी लोग, अल्प श्रद्धालु लोग उनको मनुष्य समझते हैं और उनकी निंदा करते हैं। तो श्री रामचंद्र भगवान हैं, षड ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। श्री कृष्ण के बारे में तो हम ब्रह्म संहिता से सुनते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, सब कारणों के कारण हैं। ईश्वर है परम है कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सच्चित आनंद विग्रह, ये शब्द जहां पाए जाते हैं, जिससे हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है, वो एक व्यक्ति हैं और उनका एक रूप है। विग्रह का तात्पर्य है रूप या व्यक्तित्व, और उनका व्यक्तित्व किस तरह का है, सच्चिदानंद है उनका रूप। हमारा जो रूप है अर्थात इस भौतिक जगत में रहते हुए हम देहधारी व्यक्तियों का रूप कैसा है? असत, अचित और निरानंद। ये क्षणभंगुर है, यह शरीर अज्ञान से पूर्ण है और दुखों से पूर्ण है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। उसी तरह से श्री रामचंद्र का शरीर भी सच्चिदानंद विग्रह है। अब कई बार ऐसे देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि आप केवल स्मृति शास्त्रों को मानते हैं, पुराणों को, परंतु श्रुति शास्त्रों से आप प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं। श्रुति और स्मृति इनकी तुलना में वो कहते हैं कि श्रुतियों का अधिक महत्व है, इसलिए श्रुतियों से आपको कुछ बताना चाहिए, वेदों से कि भगवान एक व्यक्ति हैं, क्योंकि ऐसे लोग मानते हैं कि परम सत्य निराकार है। तो ये सच्चिद आनंद शब्द को जब वो सुनते हैं और विग्रह शब्द को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे श्रुति शास्त्र में नहीं है। परंतु शुक्ल यजुर्वेद के मुक्तिका उपनिषद में ये श्लोक पाया जाता है, राम त्वाम परमात्मसि सच्चिदानंद विग्रह इदानीं त्वाम रघुश्रेष्ठ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वो कहते हैं राम त्वाम परमात्मसि, हे राम, आप स्वयं परम सत्य भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, आप सच्चिदानंद विग्रह हैं। वही शब्द जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रयोग करते हैं श्री कृष्ण के लिए। तो शुक्ल यजुर्वेद के श्लोक में बताया जाता है कि श्री राम भी सच्चिदानंद विग्रह हैं। इदानीं त्वाम रघुश्रेष्ठ प्रणमामि मुहुर्मुहुः, आप ही रघुश्रेष्ठ हैं, रघुश्रेष्ठ अर्थात रघुकुल में श्रेष्ठ, और मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। तो ये सच्चिदानंद विग्रह है, ये जो शब्द हैं ये स्पष्ट इनका उल्लेख यहां पे पाया जाता है। वशिष्ठ संहिता नाम का भी एक ग्रंथ है जिसमें बताया जाता है रामस्य नाम रूपम च लीला धामम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। कितना सुंदर श्लोक है। इसमें यह बताया गया है रामस्य अर्थात श्री राम के चतुष्टयम्, ये चार चीजें, नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये चार चीजें जो श्री राम से संबंधित हैं वो नित्य रूप से सच्चिदानंद विग्रह हैं। और वो कौन से हैं चार चीजें? नाम, रूप, लीला और धाम। तो भगवान श्री राम के नाम, उनकी लीलाएं, उनका रूप और उनका धाम, ये सब नित्य है, ये सब सच्चिदानंद है। तो श्री राम भी एक व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं, रामादि मूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन्नानावतारम करोत् भुवनेषु किन्तु। तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि राम जैसे अनेक भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं। तो राम और कृष्ण में वैसे देखा जाए तो अंतर नहीं है, दोनों सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य भगवान हैं, परंतु श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं श्री राम, एक विशेष भाव को स्वीकार करके प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण और तब वो श्री राम कहलाते हैं। वैसे तात्विक कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो इस तरह जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं वो सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री राम जो पुरुषोत्तम हैं, उनकी चर्चा हो रही है। अब नारद जी जब वर्णन करते हैं इनका, तो इन 70 गुणों में से कई जो उनके गुण हैं या लक्षण हैं वो उनके दिव्य शरीर के हैं, उनके दिव्य शरीर का वर्णन करते हैं। ये साबित करने के लिए कि भगवान श्री राम या श्री कृष्ण ये कोई केवल ज्योति या प्रकाश या निराकार कोई शक्ति ऐसे नहीं है, ये तो एक व्यक्ति है। और जब यहाँ प्रकट होते हैं उस समय भी अपने सच्चिदानंद रूप में प्रकट होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि श्री राम का शरीर कैसे है, उनकी भुजाएं बहुत मजबूत हैं, लंबे हैं, आजान बाहो हो। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम सुनते हैं वृंदावन दास ठाकुर द्वारा, आजान उलंबित भुजौ कणकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ। जो ऐसे बहुत विशेष व्यक्ति होते हैं उनकी भुजाएं लंबी होती हैं और घुटनों तक पहुंचती हैं। तो इसी तरह से श्री राम की भुजाएं भी लंबी हैं, घुटनों तक पहुंचती हैं, आजान बाहो। साथ साथ उनके भुजाएं बहुत मजबूत भी हैं, बहुत बलवान हैं। उनका जो वक्षस्थल है और उनके कंधे हैं दोनों बहुत ही चौड़े हैं, देखने में उनका रूप बहुत सुंदर है। उनके गर्दन का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कंबु ग्रीव, ग्रीव अर्थात गर्दन, कंबु अर्थात शंख। जैसे श्री कृष्ण का वर्णन भी ऐसे अनेक जगह पाया जाता है कि उनका गर्दन जो है, जो शंख में जो तीन रेखाएं होती हैं वैसे भी उनके गर्दन में होते हैं। तो भगवान के गर्दन की तुलना एक शंख से भी कभी की जाती है। तो ऐसे श्री राम को भी कंबु ग्रीव कहते हैं, महाबाहु, बहुत शक्तिशाली उनकी भुजाएं हैं, महेश्वास है। और इन शक्तिशाली भुजाओं में वो अपने धनुष को धारण करते हैं। श्री राम के धनुष का नाम क्या है, किसी को पता है? वो कृष्ण के धनुष का नाम शारंग है, श्री राम के धनुष का नाम क्या है? हाँ जी, कोदंड, कोदंड। इसलिए कोदंड राम, राम को कोदंड राम भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में विशेष करके आप में से कोई आंध्र प्रदेश से हो तो आप जानते होंगे कोदंड राम, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है और मंदिर भी ऐसे है। तो अपने शक्तिशाली भुजाओं में वो इस धनुष को धारण करते हैं और इन भुजाओं के द्वारा वो अद्भुत से अद्भुत कार्य कर बैठते हैं। जब विश्वामित्र मुनि उनको ले गए थे जनक के राजधानी में, राजा जनक के राजधानी में मिथिला नगरी में वैदेही या सीता देवी के स्वयंवर में, तो शिव जी का धनुष वहां पर पड़ा हुआ था। शिव जी के धनुष को उठाने के लिए 500 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। एक जगह लिखा है 5000 लोग, खैर 500 हो या 5000 हो, बहुत शक्ति, बहुत वजनदार है। और बड़े हट्टे कट्टे 500 या 5000 लोगों की आवश्यकता होती थी उस धनुष को हिलाने के लिए। फिर उसे एक रथ के ऊपर सवार करके रथ खींचा जाता था और महाराज जनक के पूर्वजों को यह धनुष प्राप्त हुआ था शिव जी के द्वारा। इसके पीछे एक इतिहास है, खैर। और जनक महाराज ने जब अपनी सुंदर कन्या पुत्री सीता देवी को देखा कि अब आयु हो गई है, अब सीता का विवाह होना उचित है, तो वो सोच में पड़ गए कि ऐसे कौन योग्य वर होगा जो सीता देवी जैसे सुंदर और सुशील राजकुमारी से विवाह करने योग्य होगा। तो उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की और परीक्षा रखी कि केवल वही राजकुमार मेरी पुत्री का विवाह करने के लिए योग्य होगा जो कि शिव जी के धनुष को उठाकर उठाएगा और उसको तोड़ेगा। उठाने की बात की थी उन्होंने और सारे पृथ्वी भर से राजकुमार आए थे, राजा और राजकुमार आए थे, सबने सीता देवी के सौंदर्य के बारे में सुना था, सभी चाहते थे कि सीता देवी को वो अपना लें। तो जब आए एक के बाद सारे दुनिया के शूर वीर क्षत्रिय सामने आए, लेकिन तनिक भी उस धनुष को हिला नहीं पाए, वो उठाने की बात दूर है, हिला भी नहीं पाए, तनिक भी नहीं हिला पाए। और निराश होकर अपमानित होकर अपने अपने स्थानों में बैठ गए। उधर विश्वामित्र ने इशारा किया श्री राम को कि चलो वत्स, जाओ आगे, हाथ चलाओ। वैसे लक्ष्मण जी तो श्री राम से कह रहे थे, भैया जाइए जाइए, ये सारे हैं, ये थोड़ी उठा पाएंगे इस धनुष को। परंतु श्री राम धर्मज्ञ थे, गुरु का कहे बिना कैसे कुछ करते, ऐसे तो राह देखते रहे। बड़े धीरज रख कर शांति से बैठे रहे, देखते रहे असफल प्रयास सारे राजकुमारों के। और जब विश्वामित्र मुनि ने इशारा किया, तब उठकर वो धनुष के पास गए, प्रणाम किया, क्योंकि ये शिव जी का धनुष था। और शिव जी के धनुष को उठाया बड़े आसानी से, जैसे बच्चा को खिलौना उठाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे चमत्कार तो करके ही दिखाया था, गोवर्धन पर्वत धारण करके अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पर लगातार 7 दिन और 7 रात उन्होंने धारण करके रखा। तो जब भगवान ऐसे विशाल पर्वत धारण कर सकते हैं तो धनुष उठाने में क्या समस्या है। वैसे केवल धनुष और पर्वत उठाने से भगवान का गौरव बढ़ता नहीं है, ये सब भगवान के लिए क्या है, मामूली कार्य है। जब भगवान के अंश, उनके कला अनंत शेष भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण करके रखे हुए हैं और उनको कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, ऐसे करते समय उनको ऐसे प्रतीत होता है कि मानो ये सारे ब्रह्मांड रुई के बीज हैं, छोटे छोटे बीज, या तिल के बीज हैं। तो इसलिए भगवान श्री राम जब सामने आए तो बड़े आसानी से धनुष को उठा पाए, उठाकर प्रत्युंच जोड़ दिया, रस्सी बांध दी और इस तरह से खींच लिया उस रस्सी को, उस प्रत्युंच को खींच लिया। इतना बल लगाया उन्होंने अपने भुजाओं से जब तीर लगाया कि धनुष ही टूट गया बीच में से। और जब धनुष टूटा तो इतनी भयंकर ध्वनि हुई वहां पर कि राजा जनक, विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सब जमीन के ऊपर गिर पड़े। जो खड़े थे, वो बैठे थे, सब जमीन पर आ गए। ऐसी भयंकर ध्वनि हुई कि मानो सारे ब्रह्मांड का ही विस्फोट हो गया हो। तो श्री राम को कोई कठिनाई नहीं हुई उस धनुष को तोड़ते हुए, बड़े आसानी से आराम से तोड़ दिया उन्होंने, मानो कि वो क्रीड़ा में कर रहे हैं। और उधर सीता देवी बहुत प्रसन्न हुई। वैसे तो सीता देवी श्री राम की नित्य संगिनी हैं, ये तो लीला है, भगवान की भौम लीला है कि स्वयंवर होता है और श्री राम आके सीता देवी का हाथ जीत लेते हैं, ऐसे अपने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करके। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र और सीता देवी एक दूसरे के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। साकेत धाम में, अर्थात जो परव्योम अयोध्या है, वहां पे सीता देवी श्री राम के साथ सदैव रहा करती हैं। तो ऐसे सुंदर लीला भगवान की हुई वहां पर। श्री राम ने उठाया धनुष को, तोड़ भी दिया, और इस संदर्भ में एक चुटकुला है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, जो हमारा बहुत प्रिय चुटकुला है, उसको अक्सर सुनाते रहते हैं। आपने ये चुटकुला सुना होगा शायद पहले भी। ये एक टीका है हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के ऊपर। हुआ ये कि एक बार एक पाठशाला थी, इसमें एक बार जो सरकार के शिक्षण विभाग के निरीक्षक थे वो उस पाठशाला में आए परीक्षा करने के लिए, कि भाई जांच करने के लिए कि यहाँ सब कुछ कैसे चल रहा है। तो आए वहां पर, भाषण दे रहे थे बच्चों को, देते देते उन्होंने बच्चों से पूछा, अरे बच्चों बताओ, आप सब ने रामायण पढ़ा है? तो सब ने हाथ ऊपर किया, हाँ 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 सर 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 हमने पढ़ा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा ये बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो वहां बिल्कुल शांति थी, कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था। काफी कई क्षणों तक जब शांति बनी रही तो निरीक्षक इधर उधर देख रहे थे, अरे कोई बोलो। तो एक बच्चे ने पीछे से हाथ ऊपर किया, तो निरीक्षक बड़े खुश हो गए कि भाई ये उत्तर देंगे सही। तो बच्चे से कहा कि भाई कहो। तो बच्चा बड़ा घबराया हुआ था, तो बच्चे ने उठकर कहा, सर सर मैंने नहीं तोड़ा। तो निरीक्षक हैरान हो गए, अरे ये कैसी बात है। तो अध्यापक की ओर देखा उन्होंने, अध्यापक भी उनके साथ में बैठे हुए थे। तो अध्यापक की ओर जब देखा तो अध्यापक ने सोचा कि अब वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ उत्तर दूं कि बच्चे ने ऐसे उत्तर क्यों दिया। तो अध्यापक ने कहा, सर सर मुझे पता है, इसी ने तोड़ा होगा। जब ये कहता है कि मैंने नहीं तो क्या जरूरत थी उसको बोलने के लिए, मैं जानता हूं इन बच्चों को, इसी ने तोड़ा होगा। अब बेचारे निरीक्षक और भी हैरान। अब मंच पे उनके साथ में प्राध्यापक बैठे थे, तो प्राध्यापक की ओर देखा कि भाई अपनी नजर अपनी दृष्टि से ऐसे बताना चाह रहे थे कि भाई क्या हो रहा है आपके पाठशाला में। तो जैसे ही प्राध्यापक की ओर देखा, प्राध्यापक भी उठे, कहने लगे, सर सर देखिए ऐसा है, जो भी है रहने दीजिए, स्कूल के बजट में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हालत है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। पहले समय हुआ करता था कि बचपन से हम श्री राम श्री कृष्ण के बारे में सुना करते थे, बच्चा बच्चा श्री राम की कथाओं को श्री कृष्ण की कथाओं को जानता था। आजकल राम और कृष्ण की कथाओं को क्या जानेंगे, वो तो सिनेमा के गाने और टीवी के विज्ञापनों को अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु भगवान की कथाओं को नहीं जानते हैं। और खैर आगे चल के जब अयोध्या नगरी वापस जा रहे थे, दशरथ महाराज के साथ लक्ष्मण भी साथ में थे, सीता देवी को साथ में लेकर जा रहे थे, और उधर लक्ष्मण का विवाह भी हुआ था उर्मिला देवी से। तो जब लौट रहे थे तो उस समय अचानक आंधी और तूफान होने लगा सब जगह, और सब लोग घबरा गए कि सारे अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं चारों दिशाओं में। और जो ऋषि मुनिगण वहां थे कहने लगे, कुछ तो अशुभ होने वाला है इस समय। और अचानक उस अंधेरी आंधी में से, जहां तूफान आदि वर्षा भी होने लगी थी, एक व्यक्ति आने लगे। बड़े भयानक लग रहे थे, दिखने में बहुत मजबूत लग रहे थे, जटाएं उनके बाल जटाओं के रूप में थी। और जब आए तो देखा तो ये परशुराम आए हैं। परशुराम का नाम तो आपने सुना है, वो भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। उनके पिताजी पिता का नाम था जमदाग्नि। जब क्षत्रियों ने जमदाग्नि की हत्या की तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया था, और क्योंकि क्षत्रिय गण जो हैं वो बहुत अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, तो परशुराम जी ने सोचा कि पृथ्वी का भार मुझे कम करना चाहिए। ये सारे क्षत्रिय जो हैं ये सारे दुनिया के नाक में दम बन गए हैं, अब पृथ्वी का बोझ कम करके ही रहना होगा। तो कम कर दिया। कैसे कर दिया? 21 बार सारे दुनिया के क्षत्रियों का विनाश कर दिया। और फिर जब क्षमा याचना की गई, भाई आप रहने दीजिए परशुराम जी, अब और नहीं कीजिए, रहने दीजिए। खैर ये कथा तो लंबी है। फिर उन्होंने वचन दिया कि ठीक है, मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करूंगा, नीचे नहीं आऊंगा, अब मेरा काम हो गया है। देखिए भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनके कोई न कोई विशेष कार्य होते हैं, और उन विशेष कार्यों को संपन्न करने हेतु वो आते हैं। लेकिन इस समय परशुराम जी आए थे और उनके हाथ में एक धनुष था, और जब आए तो बादलों की गड़गड़ाहट, गर्जना हो, बादलों में गर्जना सुनाई पड़ रही थी, बिजली चमक रही थी, तूफान आंधी ये सब चल रहा था, और दशरथ महाराज भी घबरा गए परशुराम को देखकर, और परशुराम के चेहरे को देखकर और भी घबरा गए, क्योंकि एक तरह का क्रोध उनके चेहरे पे था, और सारे क्षत्रिय जो है परशुराम जी से तो डरते थे ही। तो परशुराम जी आ खड़े हो गए श्री राम के सामने, क्योंकि परशुराम जी ने सुना था, अच्छा तो तुम राम हो। परशुराम जी भी अपने स्वामी को पहचान नहीं पाए कि श्री राम स्वयं पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, परम सत्य है, सच्चिदानंद विग्रह श्री राम है, नहीं पहचान पाए। तो वहां खड़े थे सामने, अच्छा शिव जी का धनुष तोड़ा है आपने, परंतु ये विष्णु का धनुष है। तो परशुराम जी के साथ विष्णु का धनुष था, और बड़े आसानी से श्री राम ने परशुराम जी के हाथों से वो धनुष छीन ली, अचानक एक क्षण छट करके छीन लिया। परशुराम भी उसको पकड़ के नहीं रख पाए, और प्रत्यंच खींचकर तीर लगाई। अब मैं कहां छोड़ूं, आपके प्रति तो मैं ये आक्रमण नहीं कर सकता, आप हम सब के लिए हम सब के लिए पूजनीय हैं। इस तरह से परशुराम वहां हैरान हो गए, और फिर क्षमा याचना करने लगे। वो समझ गए कि श्री राम कौन हैं, उन्हीं के आराध्य देव हैं, उनके चरणों में पड़ के उनकी स्तुति करने लगे। उनके चेहरे में जो तेज था वो सब मिट गया था, खत्म हो गया था, क्योंकि जब भगवान के प्रति ऐसे अपराध हुआ तो फिर किसी व्यक्ति के जीवन में या चेहरे पे तेज कैसे रह सकता है। तो इससे श्री रामचंद्र की शक्तिशाली भुजाओं का अनुमान हम लगा सकते हैं, वास्तव में नहीं लगा सकते लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान ऐसी छोटी छोटी लीलाएं करते हैं, छोटे थोड़े हमें एक झलक देने के लिए कि वास्तव में वो कितने शक्तिशाली हैं। तो उनके दिव्य शरीर का वर्णन नारद जी करते हैं, साथ साथ कहते हैं कि उनके उनका सर का आकार बहुत सुंदर है, उनका कपाल भी बहुत सुंदर है, सुललाट है, साथ साथ में सुविक्रम है, जब वो चलते हैं उनकी चाल भी बहुत मधुर है, और समह न तो वो बहुत लंबे हैं न उनकी ऊंचाई कम है, मध्यम ऊंचाई के हैं वो, जैसे श्री कृष्ण के साथ भी हैं। वैसे भगवान तो सब बड़ों में से महतो महियान अनतोणियान, तो सब बड़े बड़ों में से बड़े हैं और छोटे में से सबसे छोटे हैं। हर एक अणु के भीतर भगवान विराजमान हैं, और साथ साथ महाविष्णु के विशाल रूप में कारण सागर में शयन करते हैं। परंतु जब अपनी नरलीला करते हैं भगवान, नरलीला अर्थात जब वो मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो उस समय उनकी ऊंचाई मध्यम होती है। और कहते हैं स्निग्ध वर्ण चिक्कन, उनका शरीर बड़ा चिकना है, ऐसे वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। प्रतापवान है, विशालाक्ष है, उनकी आंखें बड़ी हैं, कमल कमल कमलों के समान हैं, लक्ष्मीवान हैं, शुभ लक्षण हैं, उनके सारे शरीर पर समस्त प्रकार के शुभ लक्षण हैं। एक महान पुरुष को पहचाना जा सकता है उसके शरीर के ऊपर लक्षणों को देखकर। तो ऐसे कई शास्त्र हैं जिनमें ऐसे वर्णन पाए जाते हैं। तो श्री राम के अंदर के शरीर में ऐसे शुभ लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो नारद जी बताते हैं वीरवान है श्री राम, नियत आत्मा, उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, धृतिमान और द्युतिमान है, द्युतिमान अर्थात तेजस्वी है, धृतिमान अर्थात जब वो कोई चीज करने के लिए ठान देते हैं, विचार करते हैं तो कोई उस संकल्प को तोड़ नहीं सकता है। जब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे पिताजी का आदेश था कि मुझे वनवास में जाना है, तो कितने सारे ऋषि मुनियों ने, उनकी माता ने, उनके भाइयों ने, प्रजा ने, सब ने उनसे निवेदन किया कि कृपया आप नहीं जाइए। क्या नहीं किया सब ने, प्रयास कैसे नहीं किया उनको मन के बदलाव करने के लिए, परंतु एक नहीं मानी किसी की नारद जी श्री रामचंद्र ने। बल्कि स्वयं दशरथ महाराज कहने लगे कि अरे देखो तुम मेरी ही हत्या कर डालो और तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि मेरी हत्या करो, ऐसे करो और तुम बैठ जाओ राजगद्दी पर। उन्होंने कहा नहीं, आपके धर्म का भी पालन हमें करना है, आपने एक बार हमें कह दिया तो हमें उसको मानना चाहिए। आगे चल के जब चित्रकूट में वो थे तो अयोध्या के निवासी भरत महाराज के साथ आए, उनमें से कई ऋषि मुनिगण भी थे और उन्होंने तरह तरह के तर्क आदि प्रस्तुत किए श्री रामचंद्र के सामने। यहां तक कि ऐसे एक ऋषि थे जिन्होंने नास्तिकवाद को भी कहा, किसी न किसी तरह से ये न के न प्रकार ने श्री राम को अयोध्या वापस ले जाया जाए। तो तरह तरह के तर्क कर रहे थे, वाद प्रस्तुत कर रहे थे किसी न किसी तरह से श्री राम को वापस लाने के लिए, परंतु श्री राम दृढ़ रहे, नहीं, एक बार मैंने निर्णय लिया है और ये धर्म के अनुसार है। हालांकि ये निर्णय लेने से बहुत कठिनाई होगी, लेकिन हम धर्म के पथ से हटेंगे नहीं। धृतिमान, धृतिमान अर्थात जो दृढ़ व्रत है, वशी, वशी अर्थात जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, नियतात्मा अर्थात जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, श्रीमान, वाग्मी, वाग्मी अर्थात वाक्पटु। और जब हम आगे चल के अयोध्या कांड के प्रारंभ में श्री राम के गुणों का वर्णन सुनेंगे उस समय इस विषय में और ज्यादा हम चर्चा करेंगे। शत्रु निबर्हणः, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, धर्मज्ञ हैं और अपने व्रत से या अपने वचन से कभी हटते नहीं हैं। प्रजानाम च हिते रतः, अपने प्रजा के सदैव हितैषी हुआ करते थे, इसलिए वो आदर्श राजा थे। सच्चा राजा वो होता है जो अपने आप से ज्यादा अपने प्रजा से प्रेम करता है, अपने प्राण भी त्यागने के लिए प्रजा के लिए तैयार होता है। श्री राम भी ऐसे थे कि प्रजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे वो, इसलिए प्रजा उनसे प्रेम करती थी जितना ही वो प्रजा से प्रेम करते थे। देखिए प्रेम जो है ये दो तरफी होता है। राजा जब प्रजा से प्रेम करेगा और वास्तव में हितैषी बनेगा प्रजा का, तब प्रजा भी ऐसे राजा से प्रेम करेगी, वो राजा बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। परंतु जब राजा या नेता स्वार्थी हो जाते हैं तो फिर लोकप्रिय कैसे होंगे, तो प्रजा भी स्वार्थी हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। तो श्री राम के बारे में आगे नारद जी कहते हैं, ज्ञान संपन्न, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न थे श्री राम। शुचि अर्थात उनके बर्ताव में वो शुद्ध थे, कभी छल नहीं, कभी कपट नहीं, सीधा बर्ताव, शुद्ध बर्ताव, कभी अनैतिकता नहीं उनके कार्यों में। समाधिमान, जब भी वो कोई कार्य करते थे तो पूरे ध्यान लगाकर करते थे, मन को पूरी तरह से उस विषय पर केंद्रित करते थे, एकाग्र चित्त से उस कार्य को संपन्न करते थे। रक्षित जीव लोकस्य, समस्त प्राणियों के रक्षक। धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म के रक्षक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि वो धर्म की ग्लानी जब होती है और अधर्म की वृद्धि जब होती है तब यहां प्रकट होते हैं। तो समय समय पर भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं। श्री राम के रूप में जब भगवान आए तो उन्होंने भी धर्म की रक्षा की, अधर्म का विनाश किया, अधर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों का विनाश किया उन्होंने। आगे बताते हैं नारद जी, स्वजनस्य च रक्षिता, कि अपने जो स्वजन हैं, अपने जन अर्थात उनके जो भक्त हैं, जो उनके शरण में आए हैं, उनकी रक्षा करते हैं भगवान। जब श्री राम वानर सेना को लेकर पहुंच गए थे समुद्र के तट पर रामेश्वरम के निकट, तो राह देख रहे थे समुद्र देव की। उस दौरान खबर पहुंची लंका में कि श्री राम सेना को लेकर उपस्थित हुए हैं, समुद्र के उस पार बैठे हुए हैं, राह देख रहे हैं, शीघ्र ही लंका पहुंच जाएंगे। पहली बार रावण के हृदय में डर उत्पन्न हो गया, क्योंकि हनुमान तो तहस नहस करके चले ही गए थे, लंका को जलाकर तो गए थे, तो अब यदि हनुमान ऐसे कर सकता है जो राम का दास है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वामी कितना शक्तिशाली होगा। तो रावण ने सभा बुलाई अपने मंत्रियों की और चर्चा वहां हो रही थी। कुंभकर्ण को जगाया गया बड़े मुश्किल से, और क्या करना पड़ा कुंभकर्ण को जगाने के लिए वो एक अलग प्रवचन का विषय है। खैर जग गए कुंभकर्ण, वो भी आए, क्योंकि आपातकालीन स्थिति थी, अब तो जगाना पड़ा। वैसे कुंभकर्ण केवल साल में एक बार जगते थे, खाते थे और फिर सो जाते थे, तो ऐसे आपातकालीन स्थिति में जगाना आवश्यक था। तो वो जगे आए। जब रावण ने पूछा सलाह सबसे कि अब क्या किया जाए, तो कुंभकर्ण ने कहा कि किसने कहा आपको सीता देवी को अपहरण करने के लिए, आपने पूछा नहीं हम सबसे ये कार्य करने के पहले, नहीं तो हम आपको कोई अच्छा उपदेश देते। परंतु ठीक है, अब क्या किया जाए, आपने किया सो किया, किए हुए चीज को तो बदलाया नहीं जा सकता। एक बार तीर धनुष से निकल जाती है तो वापस नहीं लिया जा सकता उस तीर को, तो कोई बात नहीं, आपने गलत काम किया तो सही, तो मैं आपका भाई हूं तो चिंता नहीं करना, मैं रक्षा करूंगा आपकी, कोई आने दो राम को या किसी को भी, हम संभाल लेंगे युद्ध भूमि में। तो ऐसे और अन्य उनके सेनापति थे, एक के बाद एक रावण के हौसले को बढ़ाते रहे। आपने बिल्कुल सही किया है हे राजन, उसमें कौन सी बड़ी गलती की आपने कि सीता देवी को उठा ले आए। हैं आप बड़े शूरवीर, आपका अधिकार है, आप ऐसे कर सकते हैं। जब राजनेताओं की बात हो रही है तो छोटी सी बात यह भी सुनाए आपको। एक भक्त हमें मिले थे, अच्छी तरह से पहचानते हैं हमें, तो वो उद्योगपति है। तो एक बार किसी एक अन्य राज्य में, मतलब भारत में एक प्रांत में, उस प्रांत के एक मंत्री से मिले थे, क्योंकि मंत्री लोग जो है उद्योगपतियों से मिलते हैं क्योंकि धन की आवश्यकता होती है। तो ये भक्त जो है, जो उद्योगपति थे, थोड़ा बहुत उनको प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे कि भाई ऐसे मंत्रियों को दिल में बुद्धि ठीक हो जाए, कुछ भगवान के बारे में कुछ सुने ये लोग। तो जब ऐसे प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे तो वो मंत्री ने अच्छी तरह से उपदेश को ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे धार्मिक विचारों तत्वों में कोई चर्चा होने लगी और विषय आया रावण के ऊपर। तो उस मंत्री ने कहा, अरे रावण ने क्या गलती कर ली, सीता दे अच्छे लगे उठा लिया। एक मंत्री है ये हम कोई आपको कहानी नहीं बता रहे हैं, हमारे देश के एक प्रांत के मंत्री हैं, अभी थे, अभी नहीं है, वो पहले थे। तो ये बेचारे आश्चर्यचकित हो गए, हमें मंत्री ऐसे बात कर रहा है। बाद में जब आकर उन्होंने हमसे कहा कि उनसे मिला ये ऐसे आदमी बात करता है, तो हमने कहा कि आपको पूछना चाहिए था कि आपके पत्नी को कोई उठा कर ले जाता तो आपको कैसे लगता। फिर हमने उनसे बताया कि नहीं नहीं ये ऐसे आदमी है। वो कहता क्या कोई बात नहीं उठा लेने, ये आदमी ऐसे भी कह सकता है, ऐसे लोग हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा। अब जब राजा ही या जो नेता होते हैं वो उनकी श्रद्धा ऐसी है, उनकी भावना या धारणा ऐसी है, तो ये सब हो रहा है, बलात्कार आदि हो रहे हैं समाज में, क्यों नहीं होंगे। जब राजनेताओं की भावना ऐसी है तो प्रजा भी वैसे ही कार्य करेगी। तो खैर सब रावण का हौसला बढ़ा रहे थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप शक्तिशाली हैं तो आपने उठा लिया सीता देवी को, उसमें क्या गलती कर लिया आपने। विभीषण अकेले थे जिन्होंने टोका अपने भाई को और कहने लगा कि हे रावण, एक आखिरी मौका है आपके लिए, अब भी समय है, हालांकि देर हो चुका है लेकिन बहुत देर नहीं, अब भी सीता देवी को लौटा के अपनी जान को बचा सकते हो और अपने प्रजा और अपने राज्य को विनाश से बचा सकते हो, और जो तुमने किया है सरासर गलत है, धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो ऐसे जोरदार सुनाया विभीषण ने। तब ऐसे कहा जाता है, चाणक्य पंडित भी कहते हैं, जिस तरह से सांप को, जहरीले सांप को दूध पिलाने से, पौष्टिक दूध पिलाने से उसका जहर बढ़ जाता है, उसी तरह एक मूर्ख व्यक्ति को अच्छे उपदेश देने से वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो अच्छे उपदेश तो दिए थे विभीषण ने, जो बिल्कुल धर्म के अनुसार थे, परंतु रावण को गुस्सा आया। रावण ने कहा कि भाई और दोस्त के रूप में ये शत्रु मेरे सभा में कहां से आ गया, यदि तुम मेरे भाई न होते तो इसी क्षण तुम्हारी हत्या कर दी होती मैंने, तो इसी क्षण यहां से निकल जाओ, केवल अपने सांस को साथ में लेकर निकल जाओ। तो ऐसे कई कटु वचन रावण ने विभीषण से कहे और विभीषण वहां से निकल पड़े। उनके साथ केवल उनके चार सहायक थे, आकाश पथ से होकर वो निकल पड़े, क्योंकि राक्षसों को भी ऐसी योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिससे कि वो आकाश पथ से भी गमन कर सकते हैं। तो वो चले आकाश से, वो निकल पड़े वहां पर। रावण के जो कटु वचन उनको तीरों के समान प्रतीत हुए हृदय में। जब भी कोई हमें कटु वचन कहता है तो तीर के समान ही चुभते हैं हमें, हमारे हृदय में। तो विभीषण चले गए और समुद्र पार करके उस स्थान में आए जहां वानर सेना श्री राम के साथ विश्राम कर रही थी। आसमान में ऊपर खड़े होकर वो अनुमति चाह रहे थे नीचे आने के लिए। वानरों ने देखा, हलचल मच गई सारे वानर सेना में। अरे देखो देखो देखो, क्या हुआ क्या हुआ, देखो ये आए राक्षस आ गए हैं लंका से। तो सभी लोग कह रहे थे मैं छलांग मारकर उनको नीचे खींच लूं, तुरंत खत्म कर देते हैं इनको। तो ऐसे बातचीत चल रही थी आपस में। सारे अंगद, नील, नल, सुग्रीव इत्यादि, हनुमान जी सब अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। विभीषण ने अपना परिचय बतलाया कि मैं विभीषण हूँ, रावण का भाई हूँ और मैं श्री राम का शरण लेने आया हूँ। मेरे भाई रावण के कार्यों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं अब शुद्ध हृदय से श्री राम का शरण लेने आया हूँ। तब विचार विमर्श हुआ, सबने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो धोखा है, अवश्य ये रावण की चाल है, ये केवल हमारे जो सेना की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए यहां पर आए हैं और जानकारी लेकर वापस चले जाएंगे, या तो फिर हमारे सेना के अंदर रह के कुछ न कुछ हमें हानि पहुंचाएंगे। आखिर खून जो होता है वो खून है, आखिर भाई है, भाई से झगड़ा हुआ भी होगा लेकिन खून का रिश्ता है आखिर, तो न जाने क्या करेगा। साथ साथ ही है राक्षस, राक्षसों के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। तो ऐसे सब वाद चल रहा था वानरों के बीच में। तब मामला श्री रामचंद्र के सामने आया तो राम ने पूछा, भाई क्या चल रहा है, क्या इतना वाद कर रहे हो, बताओ मामला क्या है। तो सबने बताया, सारी बातें श्री राम ने सुनी, विभीषण को देखा। भगवान तो सभी के हृदय में विराजमान हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। परमात्मा के रूप में भगवान तो जानते ही हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी कौन सी इच्छाएं हैं। भगवान के साथ कौन धोखा कर सकता है, ये तो संभव नहीं है। हम अपने साथ धोखा कर सकते हैं परंतु भगवान के साथ नहीं कर सकते। तो श्री राम ने विभीषण के हृदय को समझ लिया और फिर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये भी एक प्रसिद्ध श्लोक है, सकृत एव प्रपन्नो यह तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददाम ये तद व्रतम मम। उन्होंने कहा सकृत एव, एक बार भी अनायास, प्रपन्नो यह, जो व्यक्ति मेरे शरण में आया है, शरणागत होकर आया है, और क्या करता है, प्रार्थना करता है, तब अस्मि इति याचते, ऐसी याचना मुझसे करता है, तव अस्मि, मैं आपका हूं। तो मैं क्या करता हूं, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, मैं ऐसे व्यक्ति को सर्वदा अभय प्रदान करता हूं, निर्भयता प्रदान करता हूं। वो सदैव निडर रहेगा। क्यों निडर रहेगा, क्योंकि मेरी सुरक्षा का वचन मैं देता हूं ऐसे व्यक्ति को, कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी रक्षा उसके साथ रहेगी। तो ये भगवान ने कहा व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। दूसरे शब्दों में जब कोई भगवान के सामने जाकर हृदय से शरण ग्रहण कर लेता है, तो भगवान जो कि सर्वश्रेष्ठ शरण्य हैं, वो तुरंत शरण प्रदान करते हैं शरणागत व्यक्ति को। देखिए, भक्ति का रास्ता शरणागति का रास्ता है। शरण, शरणागति, और जो शरण ग्रहण करता है उसे शरणागत कहते हैं, और जिस व्यक्ति का शरण वो ग्रहण करता है उसे उन्हें शरण्य कहते हैं। तो आदर्श और सर्वश्रेष्ठ शरण्य है भगवान। वैसे तो दुनिया में हम अनेकों के शरण ग्रहण करते रहते हैं, परंतु वो आदर्श शरण्य नहीं है। शरण्य तो केवल भगवान है। शरण्य अर्थात जो शरण ग्रहण करने योग्य हैं। देवर्षि भूतापितृणां पितृणां न किंकरो नायम ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहित्य कर्तम्। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है कि जब व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में होता है तो वो ऋणी होता है, देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति, प्राणियों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, देवताओं के प्रति। परंतु जब वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाता है तो किसी का वो, अन्य व्यक्ति का वो दास या किंकर नहीं रहता, वो मुक्त हो जाता है इन समस्त जिम्मेदारियों से। अब केवल कृष्ण दास बन जाता है, अन्यों की सेवा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती है उसको। गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, अपने समस्त कार्यों को त्याग कर जो व्यक्ति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे मुकुंद के शरण में जाते हैं, शरणम शरण्यम, वो शरणम शरण ग्रहण करते हैं। किनके शरण? मुकुंद के जो शरण्य हैं। तो शरण्य केवल भगवान है। और जब विभीषण ऐसे शुद्ध हृदय से उनका शरण ग्रहण करने के लिए आए, श्री रामचंद्र ने उनको पहचान लिया कि इसकी शरणागति सही है, ये वास्तव में एक शरणागत व्यक्ति है, और जो भी मेरे शरण में आते हैं, मैंने तो वायदा कर ही दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच, मैं तो उनके हर प्रकार से रक्षा करूंगा। अब जब कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है तो वो भगवान का आदमी बन जाता है, भगवान का स्वजन बन जाता है। तो भगवान फिर बाध्य हो जाते हैं उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए। जब कोई भगवान का स्वजन बन जाता है, फिर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भगवान के हाथ में आ जाती है। जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाते तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अपने आप लेते हैं, अपने आप के ऊपर लेते हैं, और सोचते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा शरीर इत्यादि, हमारा धन, ये सब हमें बचा सकता है। परंतु जब हम समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, इनमें से कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति मुझे वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है, तब हम जो वास्तविक शरण्यम हैं भगवान, उनके शरण में जाते हैं, और फिर भगवान ऋणी हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, उनको शरण प्रदान करना ही पड़ता है, उस व्यक्ति की रक्षा करनी ही पड़ती है। तो यहां नारद जी बता रहे हैं स्वजनस्य च रक्षिता, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है भगवान का। यदि हमने भगवान का शरण लिया फिर हम निश्चिंत हो गए, भगवान हमें निडर बनाएंगे, यदि हमारे हृदय में डर अभी तक है तो शरणागति की कमी है। भगवान के अपने वचन निभाने में कोई कमी नहीं है। ये यथा माम प्रपत्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जितनी हमारी शरणागति होगी उतनी निर्भयता भगवान प्रदान करेंगे। 10% शरणागति, 10% निर्भयता, 90% शरणागति, 90% निर्भयता, 100% शरणागति, 100% निर्भयता, जैसे प्रहलाद, अम्बरीश महाराज आदि थे। तो ऐसे नारद मुनि आगे वर्णन करते हैं, वेद वेदांग तत्वज्ञ धर्मज्ञ शास्त्रज्ञ, सारे शास्त्रों को वो भलीभांति जानते हैं, शास्त्रों के स्रोत तो वही हैं, वेदों का उद्गम तो भगवान के साथ से ही तो हुआ है, ब्रह्मा जी के गुरु तो वही हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के गुरु ब्रह्मा जी को उपदेश देने वाले वही हैं। साथ साथ नारद जी आगे बताते हैं, प्रतिभावान, भगवान की बुद्धि बहुत तेज चलती है, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता भगवान को नहीं पड़ती है। आर्य, बहुत सज्जन सभ्य हैं। समह, सर्व समह, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। फिर नारद जी कहते हैं, सदैव प्रियदर्शन, दिखने में सदैव बहुत सुंदर और हसमुख दिखते हैं। तो ये भगवान का सौंदर्य है, ये भी बहुत अद्भुत है। हम तो जानते हैं कि जहां तक सौंदर्य की बात है भगवान के विविध रूपों की, उनमें जो रूप माधुरी श्री कृष्ण में है वो और भगवान के किसी भी रूप में नहीं है, नारायण में भी नहीं है, और हाँ श्री राम में भी नहीं है। परंतु श्री राम का भी सौंदर्य जो है ये साधारण नहीं है, श्री राम भी दिखने में अति सुंदर हैं, प्रिय दर्शन है। जब भी कोई देख लेता है भगवान के सुंदर रूप को तो आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए और एक बात यहां बताते हैं, सोमवत प्रिय दर्शन है, सदैव प्रिय दर्शन है और सोमवत प्रिय दर्शन है। सोम अर्थात चांद, जैसे चांद जो है वो हमेशा सुंदर दिखता है, पूर्णिमा के चांद को लोग देखते हैं, कवि जो है बहुत कविताएं आदि लिखते हैं, और जब ये कुछ किसी के बारे में कहना होता है कि इसका चेहरा कितना मासूम है, कितना सुंदर है, तो कहते हैं चांद का मुखड़ा है ऐसे कहते हैं ना। तो चांद की तुलना की जाती है क्योंकि चांद बहुत सुंदर है, और पूर्णिमा के किरणें जब आती हैं पूर्णिमा के रात्रि में तो सारा माहौल जो है बहुत सुंदर बन जाता है। तो खैर ऐसे वाल्मीकि रामायण में ही आगे चल के वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रियदर्शनम।